वासना मनुष्य के जन्म मरण का कारण है। वासना का अर्थ ही होता है जो बसी हुई है या जो पल रही है। और ये वासना हमारे अंदर इच्छाओं के रूप में, विचार के रूप में, आइडियाज के रूप में और स्वभाव के रूप में, इच्छाएं तो हम जानते ही हैं, जो कुछ भी हम इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं जगत में, तो इसको अनुभव करके इसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, इसके द्वारा सुख भोगने की कोशिश करते हैं। इसलिए अनंत प्रकार की इच्छाएं हमारे मन के अंदर उठती हैं। और उनके द्वारा हम सुख भोगते हैं और उन्हीं के द्वारा हम दुख भी भोगते हैं। जो कुछ भी संसार में देखते हैं, समझते हैं, उनके बारे में तरह तरह के विचार हमारे मन में उठते हैं। और तीसरी चीज स्वभाव है। स्वभाव हम जानते हैं कि समता विलास में तथा अन्य शास्त्रों में इस स्वभाव को तीन श्रेणी में बांटा गया है। एक सतोगुणी स्वभाव, दूसरा रजोगुणी स्वभाव और तीसरा तमोगुणी स्वभाव। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही वैसा हमारा स्वभाव बनता रहता है। यदि हम दूसरे का दुख दूर करने का प्रयास करते हैं, जिसमें आपका ये अहंकार नहीं होता मैं करने वाला हूं, बैकग्राउंड में आपके अंदर ये भाव बना रहता है कि प्रभु तो ही कारण करता है, और उसी कारणकर्ता की हम प्रेम से याद करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और उसको ही अपने अंदर अनुभव करने का प्रयास करते हैं। और बाकी हमारे अंदर अनेक गुण होते हैं, जिसमें क्षमा आता है। किसी ने मुझको कष्ट पहुंचाया तब भी मेरे अंदर उसके प्रति क्षमा भाव होता है, क्योंकि आप अंदर से जानते हो कि कष्ट इसने नहीं पहुंचाया है, बल्कि जैसा मेरा प्रारब्ध था उसके अनुसार प्रभु ने व्यवस्था की है, और जो ये कष्ट पहुंचा रहा है ये अपने आप में मजबूर है, क्योंकि इसके द्वारा प्रभु मुझको कष्ट दे रहे हैं, मेरे पाप कर्म की सजा दे रहे हैं। इसलिए आपके अंदर उस व्यक्ति के प्रति क्षमा भाव रहता है। ये नेचुरल क्षमा होती है, कोशिश करके क्षमा नहीं करते आप। इस प्रकार से क्षमा है, दया है, संतोष है, प्रेम है, ये सारे गुण आपके अंदर जो है धीरे धीरे विकसित होते हैं। और ऐसी स्थिति में आपके मन में एक चैन जैसा बना रहता है और उस चैन के साथ जब आप प्रभु की याद करते हो तो प्रभु की याद करने में ही आपका मन लगता है। तो इस प्रकार का जीवन जिनका है इनको कह सकते हैं इनके अंदर सत्वगुणी प्रधान है। उसी प्रकार जो लोग बड़ा पैसा कमाते हैं, संसार में बड़ी प्रगति करना चाहते हैं, बड़ा फैलाव करना चाहते हैं और संसार के सुख भोगने की बड़ी तमन्ना उनके अंदर होती है, और उसी मार्ग में अपनी संतान को भी बढ़ाना चाहते हैं, तो इस प्रकार का जिनका स्वभाव होता है संसार में फैलाव करना, सुख प्राप्ति के लिए जीना, उसी के लिए पुरुषार्थ करना, ये रजोगुणी स्वभाव है। तो मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं और भोग प्राप्ति के लिए सारा उनका प्रयत्न होता है। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी के लोग भी होते हैं जो आलसी, प्रमादी और नाजायज तरीके से भी भोग इकट्ठे करना, पैसा इकट्ठा करना, दूसरों को कष्ट देकर भी खुद सुख भोगने की कोशिश करना, ये उनका स्वभाव होता है, जिनको हम कहते हैं ये पाप वृत्ति के लोग हैं, जिनकी प्रेजेंस, जिनकी उपस्थिति दूसरों को कष्ट पहुंचाती है। तो समाज में आप देखते हैं कि तीनों प्रकार के लोग देखने को मिलेंगे और ये तीनों प्रकार के लोग आपको बालक के रूप में भी देखने को मिलेंगे, जिनकी आयु 4-5 साल ही है, लेकिन आप देखेंगे कि तीन प्रकार की वृत्ति विभिन्न बालकों में होती है। ये बात सिद्ध करती है कि ये बचपन से ही गुण साथ लेकर आया है, किसी के अंदर रजोगुण प्रधान है, किसी के अंदर तमोगुण प्रधान है, किसी के अंदर सतोगुण प्रधान है, ये बचपन से ही इसके अंदर है। तो इस प्रकार से हम इस निर्णय पर बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं कि अभी तो इसने ये स्वभाव बनाया नहीं है। बड़े आदमी को देख के तो हम कह सकते हैं इसने जैसे जैसे कर्म किए वैसा इसका स्वभाव बन गया, लेकिन छोटे से बालक को आप कैसे कहोगे कि इसने ये स्वभाव बनाया है और ये स्वभाव लेकर पैदा हुआ है। इसका मतलब कि पहले इसने ऐसे प्रकार के कर्म किए हैं जिसको हम कहते हैं कि पूर्व जन्म में इसने ऐसे कर्म किए हैं, ऐसा जीवन जिया है कि जिस स्वभाव को लेकर पिछला शरीर इसने छोड़ा वो स्वभाव इसके अंदर वो मन के रूप में सुरक्षित रहा। तो मन है क्या चीज? वास्तव में ये वासना ही है और कुछ भी नहीं। मन वासना का ही स्वरूप है और जब ये मन निर्वास हो जाता है तो मन की सत्ता भी भस्म हो जाती है, जैसी सत्पुरुषों की स्थिति होती है। तो इसीलिए मनुष्य जन्म में आकर हमको इस वासना के विज्ञान को समझना होता है गहराई से कि मेरे अंदर क्या संस्कार हैं, किस प्रकार की इच्छाएं मेरे अंदर उठती हैं, किस प्रकार के विचार मेरे मन में उठते हैं और किस प्रकार का मेरा स्वभाव है, और इन चीजों के लिए जो आईना है वो शास्त्र ही है। आप चाहे समता विलास पढ़ो, चाहे गीता पढ़ो, चाहे किसी सत्पुरुष की वाणी पढ़ो, इनकी सारी डिटेल्स वहां पर आई हुई है। उनको जब गहराई से अध्ययन करते हो तो धीरे धीरे आपका अपना एनालिसिस होने लगता है, आपको हर बात समझ में आने लगती है कि मैं जो ये कर रहा हूं, मेरे अंदर जो इच्छाएं पल रही हैं, मैं चाहता तो हूं ईश्वर की तरफ जाना, लेकिन मेरी ही इच्छाएं उस मार्ग में बाधक बन गई। मुझे शांति पसंद है, लेकिन शांति का प्रयास जब करता हूं तो मन ही मुझको अशांत कर देता है। मन मेरा ही है, मुझे उस ओर बढ़ने नहीं देता, बार बार संसार की तरफ खींच लेता है। उसका कारण आपको तभी समझ में आता है ठीक ठीक, जब शास्त्रों का गहराई से मर्म आप समझने लगते हो। और ये एक दिन दो दिन की बात नहीं होती है, इसमें वर्षों लग जाते हैं, बड़ा लंबा समय लगता है इसके लिए। तो शास्त्रों की इतनी गहराई है, वो गहराई आपको केवल थ्योरी के आधार पर समझ में आने वाली नहीं है, ये तभी समझ में आती है जब आपका प्रैक्टिकल आध्यात्मिक जीवन बनता है और किसी ऋषि के, किसी सतगुरु के, किसी अवतार के जीवन से प्रेरणा लेकर आप उस पर पूर्ण विश्वास करके आप कोशिश करते हो उसकी किसी भी आज्ञा का मेरे जीवन में उल्लंघन ना हो। जैसा वो सिखा रहा है वैसा ही मैंने अपनी बुद्धि को बदलना है, अपने निर्णय को बदलना है, अपने निश्चय को बदलना है, और उसके अनुसार ही मैंने अपने जीवन के बारे में, अपने मन के बारे में और संसार के बारे में मैंने सोचना है। तो इसमें पूरी आयु लग जाती है, ये कोई साल दो साल का काम नहीं है। इसलिए चिंतन निरंतर चिंतन चलता है, पूरी आयु चलता है। और बीच में यदि किसी के अंदर अहंकार आ गया कि मैं तो बहुत होशियार हो गया हूं, समझ लीजिए उसके डूबने का वक्त पैदा हो गया। क्योंकि जब तक आप खुद सत्पुरुष नहीं बन जाते, अर्थात जब तक आप निर्वास नहीं हो जाते, तब तक आपके डूबने के लक्षण आपके अंदर ही हैं। इसीलिए सत्पुरुष, आपने देखा होगा, कितनी भी ऊंची स्थिति को प्राप्त क्यों ना कर लें, वो अहंकार की बात नहीं किया करते, बड़े ही निर्माण होकर निर्माणता की ही बात करते हैं। महाराज जी के जीवन को देख लो कि प्रेमी जब उनके सामने आया करते थे तो कई बार महाराज जी उनके सिर झुकाने से पहले ही सिर झुका देते थे। जब पूरे वो होश में होते थे, होश का मतलब अक्सर तो वो समाधि में रहते थे, प्रेमियों के बीच में बैठे बैठे भी समाधि में चले जाते थे, लेकिन जिस समय वो नॉर्मल मूड में होते थे उस समय बड़ा ही निर्माण भाव से वो बात किया करते। जैसे कि आप जानते ही हैं कि एक घटना आपने देखी थी, पढ़ी होगी, कि जब एक साधु कहिए या उसको योगी कहिए, जब महाराज जी के पास आया तो बड़ा अहंकार को लेकर आया था। सत्पुरुष तो अंतर्यामी होते हैं, तो महाराज जी ने तो उसको पहचान लिया कि क्या सोच रहा है। जब उनके नजदीक आया तो महाराज जी ने अपने नीचे का आसन निकालकर उसके आगे बिछा दिया। तो कहने को तो बड़ी छोटी सी बात है ये, लेकिन जो अपनी विद्वत्ता का बड़ा अहंकार लेके आया था, सत्पुरुष के इस छोटे से एक्शन ने उसके सारे अहंकार को धो दिया। उनके आगे नतमस्तक हो गया, जो अपना ज्ञान का अहंकार था उसका टूट गया। तो देखिए छोटी सी निर्माणता है ये, लेकिन चेंज कितना बड़ा ला देती है। तो इसीलिए ये जितनी भी चीजें हैं, इसको हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कहते हैं, ये सारे के सारे विकार हैं और ये सब मेरे मन के अंदर ही पल रहे हैं, और इन सारे विकार ये तभी खत्म होते हैं जब मन पूरी तरह से निर्वास हो जाता है। इसलिए महाजी कहते थे प्रेमी आत्मदर्शन भी हो जाए तभी तुझको गुरु बनने की परमिशन नहीं है, क्योंकि आत्मदृष्टा सब कुछ जानता है, सारे सृष्टि के भेद को जानता है, फिर भी अभी उसके अंदर कर्तापन बाकी रहता है। बड़ा बारीक होता है वो, लेकिन फिर भी बाकी रहता है, इसलिए उसको गुरु बनने की परमिशन नहीं होती, क्योंकि आत्मदर्शी का भी पतन हो सकता है, उसकी संभावना है और इतिहास गवाह है ऐसा हुआ है। इसलिए जब तक आत्मलीन ना हो जाए, आत्मलीनताई का मतलब है वो खुद ब्रह्म रूप हो गया, अब उसके पतन की कोई संभावना नहीं है। वो उसकी अद्वैत अवस्था है जहां द्वैत है ही नहीं, तो वही गुरु बनने का हकदार है, क्योंकि उसके पतन का रास्ता बंद हो चुका, उसके मन का बीज भस्म हो चुका। तो महर्षि रमण कहते थे कि कहा जाता है कि सत्पुरुष का भी मन होता है, जब सत्पुरुष है क्रिया कर रहा है आप उसको देख रहे हो तो ये तो मानना पड़ेगा कि उसका भी मन होता है, लेकिन वो कहते हैं कि उसका मन ऐसे ही समझो जैसे कि पूर्णमासी के चंद्रमा में कितनी रोशनी होती है, कैसा चमकता है, लेकिन चंद्रमा जब दिन में चमकता है, धूप के जब धूप होती है, आप आसमान पे देखते हो कि आधा चंद्रमा चमक रहा है, तो उसके अंदर वो प्रकाश नहीं होता, पता ही रहता है चंद्रमा है ये, लेकिन चंद्रमा जो चमकता है वो चंद्रमा नहीं होता। उसी प्रकार लगता है कि सत्पुरुष का ये मन है, वो हंस भी रहे हैं, रो आंसू भी टपक रहे हैं, उनके व्यवहार भी कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो मन ऐसा ही होता है जिसका कोई संस्कार नहीं बनता। इसलिए उसको उसके मन को निर्मल मन कहा जाता है, और निर्मल मन किसे कहते हैं, वासना रहित मन को निर्मल मन कहा जाता है, जिसको रामायण में कहा गया निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल हो जाता है वो मुझको प्राप्त कर लेता है, अर्थात वो खुद ही ब्रह्म रूप हो जाता है। तो यह है निर्वास स्थिति। तो विचार करके देखो, थोड़ा सा मैं विकास कर लेता हूं अध्यात्म मार्ग पे चल के, कितना मेरे बोली में ही अहंकार आ जाता है, और कितना मैं दूसरों को दिखाने की कोशिश करता हूं कि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, मैं तुमसे ऊंचा व्यक्ति हूं, मैं तुमसे अच्छा हूं, ये सारी भावनाएं हमारे घर कर जाती है, हम अपना निरीक्षण खुद कर सकते हैं। तो विचार करो कि अभी मैं ऐबी ही हूं, क्योंकि पांच विकार हैं मेरे अंदर, विकारों को रहते हुए भी मेरा मन कह रहा है कि तू बड़ा अच्छा आदमी। सामाजिक दृष्टि से ये बातें तो आम होती हैं, लेकिन जो अध्यात्म मार्ग पर चलने का राही है और जिसके अंदर ईश्वर प्राप्ति की तड़प है, जो इस जन्म के मरण के बंधन से मुक्त होना चाहता है, उसको कितना अलर्ट होना चाहिए, जरा विचार करके देखो कितनी अलर्टनेस चाहिए। तो इसीलिए ये निरंतर निरीक्षण की चीज है। इसे महाजी कहते थे प्रेमी अभ्यास भी करो तो छुप कर करो, किसी को ये ना पता लगे तो बड़ा अभ्यास करता है। इसी बात है कि हम साधारण प्राणी है ना, हमको सिमरन करने का ये अहंकार हो जाता है कि मैं बड़ा अभ्यासी हूं, कई लोग उसका भी दिखावा करते हैं। महाजी के प्रेजेंस में भी जब सत्संग हुआ करता था, कई लोग अपना आसन लगा के तन के बैठ जाते थे, तो गुरु के आगे भी उनका अहंकार नहीं टूटता, वो बना रहता। इसीलिए अध्यात्म का जो मार्ग है बड़ा ही बारीक है, इसलिए वासना इतनी गहरी है, इतनी गहरी है कि आप देखिए जिस समय मनुष्य ये निर्वास होता है तब अपनी ही देह से मुक्त हो जाता है, अपने ही मन से मुक्त हो जाता है। देह तो स्थूल है, मन सूक्ष्म है, तो क्या स्थिति होगी सत्पुरुष के विचार करके? वो निर्वास स्थिति है कि हर चीज से वो अलग है, हर चीज से अलग है। और मैं अध्यात्म मार्ग में यदि मैं आगे बढ़ गया हूं मान लिया, तो आप फिर भी निरीक्षण करके देखो, बात बात में आपके अंदर अहंकार रहता है कि अपने शरीर का मैं, अपना रूप याद आता है, अपना नाम याद आता है, अपना आकार याद आता है, अपने गुण याद आते हैं, अपनी अपने जो ऊंचे कर्म किए वो आपको याद आते हैं, उनके कारण मैं अपने आप को श्रेष्ठ समझता हूं। तो श्रेष्ठ कौन समझता है? श्रेष्ठ वही समझ सकता है जो पहले अपने आप को देह समझेगा, उसके बाद वो अपने आप को श्रेष्ठ समझेगा। तो बताइए कि अध्यात्म तो कहां है कि वो आत्मरूप है, मैं कहां खड़ा हुआ हूं? मैं देह रूप बनकर घूम रहा हूं संसार में। तो कितना विकास चाहिए मुझे, मेरी वासना भी कितनी गहरी है। इसीलिए ये जो स्वभाव है, जो तीन प्रकार का तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, हम बड़ी आसानी से ये बात स्वीकार कर लेते हैं कि तमोगुणी व्यक्ति जो है बड़ा खराब होता है, क्योंकि हमको पता है उसकी क्रियाकलाप से दूसरों को दुख पहुंचता है। लेकिन रजोगुणी लोग हमें अच्छे लगते हैं, हम उनको देख के कहते हैं देखो इसने कितना विकास किया है, क्या हाई एजुकेशन मिली है, क्या ऊंचा इसने बिजनेस संभाला है, क्या ऊंचा पद हासिल किया है इसने, कितना पुरुषार्थ किया है, बड़े खुश होते हैं। और ये भूल जाते हैं ये तो रजोगुण है, और रजोगुण का जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, गीता बड़ा स्पष्ट कह रही है इसके लिए, निर्णय दे तो शास्त्र निर्णय दे रहा है, रजसाह तो फलम दुखम, रजोगुण का परिणाम दुख है। इसका मतलब हो गया कि जो विकसित हुआ है संसार के अंदर वो भविष्य के लिए उसने अपना दुख तैयार किया है। शास्त्र का निर्णय यदि आपने पढ़ा है, उसको समझा है, तो आपकी बुद्धि तो इस निर्णय को स्वीकार करेगी, इसने भविष्य के लिए अपना दुखी जीवन तैयार कर लिया, क्योंकि कल को इसकी मृत्यु हुई तो ये घोर रजोगुणी स्वभाव लेकर अगले शरीर में प्रवेश करेगा, अगला शरीर इसको प्राप्त होगा। और समता विलास पढ़ के देख लें, वहां स्पष्ट महाराज जी लिख रहे हैं कि रजोगुण तमोगुण में बदल जाता है। अब बताइए आज का जो रजोगुणी व्यक्ति है सोसाइटी में आपको नजर आ रहा है, वो कल को पापी बनने वाला है, इसका होश हमको नहीं होता। और इसका यदि प्रमाण रूप देखना चाहें तो आप देख लीजिए, समाज में जो बड़ा भ्रष्टाचार फैलाते हैं लोग, आप देखिए बड़े बड़े इंजीनियर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स और बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स, इनका विश्लेषण करके देखिए कि बड़े बड़े भ्रष्टाचार इन लोगों के कारण होते हैं, बड़े बड़े दुख लोगों के मन में इनके कारण पैदा होते हैं। छोटा आदमी तो छोटा ही पाप करता है, ये बड़े बुद्धिमान लोग बड़े बड़े पाप करते हैं। छोटा आदमी तो 100 रुपए की रिश्वत लेगा, ये करोड़ों रुपए की रिश्वत लेते हैं। एक डॉक्टर जो दूसरों का कष्ट निवारण करने के लिए बनता है, दूसरों का रोग हरण करने के लिए बनता है, वो अपने रजोगुणी स्वभाव के कारण खुद भोग विलास बढ़ाना चाहता है, और उनके टेस्ट तक जो लिखता है उसमें भी 20%, 30%, 40%, 50% कमीशन खा लेता है। दवाइयां जो लिखता है उसमें भी कमीशन खा लेता है। तो बताइए, जो दुखी जीव उसके पास आया है, मेहनत के पैसे लेने को कोई मना थोड़ा करता है। पेट पालने के लिए डॉक्टर भी बैठा हुआ है। लेकिन हम सब जानते हैं कि समाज में क्या हाल है। कोई अस्पताल, कोई डिस्पेंसरी मिलती ही नहीं आपको देखने को ऐसी, जहां लोगों का शोषण ना किया जाता हो, रोगियों का शोषण ना किया जाता हो। तो ये रजोगुण है ना, जिसका हम बड़ा वेलकम करते हैं, बड़ा स्वागत करते हैं, बड़े इस प्रकार के जीवन के लिए लालायित होते हैं। मेरा नाम हो जाए, मेरा अच्छा मकान होना चाहिए, अच्छी कार होनी चाहिए, अच्छा रुतबा होना चाहिए, ताकि लोग मुझको रेस्पेक्ट की नज़र से देखें। मैं ये भूल जाता हूँ, ये रजोगुण है, ये तेरे लिए खतरनाक है। तू सामाजिक दृष्टि से सोच रहा है, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं सोच रहा है। तो अध्यात्म में चलने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से सोचता है, उसकी नज़र शास्त्रीय विवेचन पर रहती है, शास्त्रीय एनालिसिस पर रहती है। इसलिए उसके दिमाग में वो सत्विचार घूमता रहता है। और बार बार ये बात कही जाती है कि सत्विचार केवल वो होता है जो किसी सत्पुरुष से प्रकट हुआ हो, वाणी के रूप में, विचार के रूप में। जो डायरेक्ट सत्पुरुष से प्रकट हुआ है उसी को सत्विचार कहते हैं। सत कहते हैं ईश्वर को, और ईश्वर से जो विचार प्रकट हुआ है वो सत्विचार है। उस पर जब मेरी गहरी नजर रहती है, उसके अनुसार जब मैं एनालिसिस करना सीखता हूँ, विश्लेषण करना सीखता हूँ, तब ये सारी चीजें मेरी निगाह में घूमती रहती हैं, हर वक्त घूमती रहती हैं। हर क्रिया जो संसार में करता हूँ, बैकग्राउंड में वो सत्पुरुषों का निर्णय मेरे दिमाग में घूमता रहता है। इसलिए मैं छोटी छोटी गलतियों से भी बच जाता हूँ। और जहां वो हटी, जहां सामाजिक दृष्टि आपके अंदर आई, गलतियां शुरू। क्योंकि सामाजिक दृष्टि का ही मतलब है कि ये वास्तव में दृष्टि है आपकी। जो दृष्टि वासना से बन रही है, जो दृष्टिकोण आपका वासना निर्धारित कर रही है। इसीलिए यदि इस वासना से लड़ाई लड़नी है, तो फिर शास्त्र का गहरा स्वाध्याय, उसका गहरा विवेचन करने की मेरी निरंतर आदत होनी चाहिए। क्योंकि वहां बड़ी बारीकियां हैं, जहां आपकी बुद्धि आज पहुंच भी नहीं सकती। चाहे आप पीएचडी होल्डर क्यों ना हो, चाहे बड़े किसी कंपनी के डायरेक्टर क्यों ना हो, आप कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन वो इतनी बारीक होती हैं कि बिना प्रैक्टिकल जीवन के, बिना आंतरिक विकास के, वो आपकी कभी समझ में भी नहीं आएगा। जैसे जैसे आपका विकास होगा, वो बारीकियां बुद्धि आपकी पकड़ने लगेगी। इसलिए ये सतत प्रक्रिया है, पूरी जिंदगी इसमें लगाने वाली चीज है। ये छोटी मोटी स्टडी से या साधारण सत्संग सुन लेने से या 10-5 लेक्चर देने से ये बुद्धि नहीं आ जाती। इसके लिए बड़ा ही अलर्टनेस चाहिए। तब जाके पता लगता है जो सतोगुण है ये भी केवल बंधन ही है। मैंने इतने अच्छे अच्छे कर्म किए हों कि सारा संसार मुझे बड़ा अच्छा व्यक्ति कहता हो, लेकिन वो सतोगुणी व्यक्ति यदि अलर्ट है पूरी तरह से, तो उसको फिर शर्म आती है। कोई उसकी तारीफ करता है तो अंदर से वो शर्मिंदा होता है। वो जानता है कि यदि मैं अच्छा इंसान हूं तो ईश्वर मुझसे दूर है, यदि मैं अच्छा इंसान हूं तो ईश्वर मुझसे दूर है, क्योंकि मैं यदि अच्छा हूं, लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, मुझको इसकी खुशी हो रही है, तो ये खुशी तो मन के अंदर अंतर्गत हो रही है। ये सद्गुणों की खुशी जरूर है, लेकिन मैं यदि खुश हो रहा हूं तो ये तो मन की क्रिया है ना। तो इसीलिए मन के ही तो बंधन में हूं मैं। याद रखो, गुण अकेला नहीं रहता। प्रकृति में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों रहते हैं। और महाजी खुद लिख रहे हैं कि गुणों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो इसलिए अभी सतोगुण है तो मेरे अंदर रजोगुण भी मौजूद है, तमोगुण भी मौजूद है, मुझे अभी दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि सतोगुण स्ट्रांग है, लेकिन है वो सतोगुण अकेला कभी नहीं रहता। इसीलिए अच्छा इंसान होते हुए भी, आध्यात्मिक व्यक्ति होते हुए भी, हर वक्त मेरे पतन के रास्ते खुले हुए। जिसने ईश्वर प्राप्ति करनी है उसने निर्गुण होना है भाई, उसने निर्गुण होना है, क्योंकि जहां निर्गुणता है वहां देह का अहंकार नहीं हो सकता, वहां देह का अहंकार नहीं होता, क्योंकि जीव की वो हालत जिस समय वो निर्गुण होता है उस समय तो ये देह और ये संसार उसके लिए ब्रह्ममय हो जाता है, आत्मरूप हो जाता है। तो उसमें जब तक वो स्थित नहीं होता, और स्थित होने के पश्चात भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। महाराज जी की स्थिति देखो, जन्म से क्या स्थिति थी उनकी, हम उसके बारे में कोई एनालिसिस तो नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ भी पढ़ाई लिखाई की है अध्यात्म की, उसके आधार पर ये बस इतना ही कह सकते हैं महाराज जी आत्म स्थित थे, क्योंकि खुद कहा है ना, जन्म से ही इनको ईश्वर का बोध था, ईश्वर के बोध वाले को हम आत्म स्थित कह सकते हैं। लेकिन महाराज जी को कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, कितना तप करना पड़ा था, जलमादा में जाके वो बोले हैं खुद, प्रेमी 14 वर्ष से जिस चीज की तलाश थी अब इनको प्राप्त हुई। जो 9 वर्ष की आयु में जंगल में समाधिस्थ रहता हो, सारी रात जंगल में बिता देता हो वो बालक किस आयु में पहुंचकर कह रहा है कि 14 वर्ष से जिस वस्तु की तलाश थी अब इनको प्राप्त हुई। तो कब गुरु बने हैं वो, देखो तो सही है। और मेरे जरा से अंदर गुण आए थे, मैं कैसा छलांगे मारता रहता हूं, कितना अहंकार अंदर आ जाता है मेरे, मैं बड़ा अच्छा इंसान हूं। तो यदि आप अंदर से विचारवान हो, शास्त्र का मर्म गहराई से आपने समझा है, तो आप इतने अलर्ट रहते हो कि जहां आपके अंदर ये भाव आता है कि मैं अच्छा इंसान हूं, तुरंत आप अलर्ट हो जाते हो कि ये जो अच्छाई मुझको खुश कर रही है ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, मेरे अंदर अच्छाई है तो लोग तो मेरी तारीफ करेंगे, मेरे अंदर बुराई है तो लोग मेरी बुराई भी करेंगे, लेकिन मैं जो खुश हो रहा हूं ये बात ठीक नहीं है। ये जो खुशी आपको हो रही है ये आपको अलर्ट कर रही है तुझे अभी सख्त मेहनत करने की जरूरत है। गुरु ने कितनी कठिन तपस्या की है, उस आत्म स्थिति में जन्म लेने के बाद भी कितना घोर तप किया है, तब उन्होंने ये बात कही है कि जिस वस्तु की 14 वर्ष से तलाश थी अब इनको प्राप्त है। मन का मैल तो तब उनका साफ हुआ, तब तक मन का मैल कायम था। फिर मैं कहां खड़ा हुआ हूं। तो इसीलिए गुरु के जीवन को भी यदि आप बारीकी से देखो तब भी आपको शर्म आएगी, जरा सा मैं अच्छा कर्म कर लेता हूं, जरा सा मेरे अंदर गुण आ जाता है, कैसा अहंकारी बन जाता हूं, कैसा मेरी चाल में अंतर आ जाता है। तो ये बड़ा ही निर्माणता का मार्ग है, क्योंकि रोग बड़ा बारीक है। जिसको महाराज जी कह रहे हैं कि भ्रम, वो भ्रम क्या है, इस कर्तापन को ही भ्रम कहते हैं। तो मैं भ्रमित इंसान हूं, और कर्तापन गायब या कहिए मनुष्य उससे आजाद का होता है जब गहरी समाधि में जाकर ही आजाद होता है, उससे पहले नहीं होता। तो जरा जरा सी क्रियाओं का मैं अहंकारी बन जाता हूं, ये सारी वासना ही तो है मेरी। तो वासना का जाल कितना गहरा है, मैं तो ये समझता हूं कि 2-4 इच्छाएं हैं मेरे अंदर, सारी पाप वृत्ति छोड़ दी, अब मैंने दूसरों को सुख देना शुरू कर दिया है, मैं अपने काम करवाना किसी से नहीं चाहता, दूसरों में काम कर देता हूँ, ये सारी बातें सोच सोच के मैं अपने ऊपर स्टैंप लगाता हूँ कि मैं निर्गुण हो गया, मैं मतलब कि मैं जो हूँ निर्विकारी हो गया। तो इसीलिए याद रखी है, ये कई जन्म का रास्ता है। आज मैं जहां खड़ा हूं, तब यदि पूरा अलर्ट होकर चला तब भी ये कई जन्म का रास्ता है, क्योंकि महाराज जी ने तो प्रेमी से खुद ही कहा था ये बात कि प्रेमी पिछले ये 3 जन्म भी कमाए। तो उनका जो आखिरी जन्म था उसमें कितनी मेहनत की उन्होंने खुद देख लिया। तो मैं कहां खड़ा हुआ हूं, मैं तो कहीं भी नहीं। तो तुलना यदि करनी है तो सतपुरुष से करके देखो ना, तब पता लगेगा मैं कितना गहरा विकारी इंसान हूं। अच्छा इंसान हूं तब ये बात है, मैं कितना गहरा विकारी इंसान हूं, तब आप निर्माण होकर यात्रा तय करते हो अध्यात्म की, और किसी भी सेक्रीफाइस को बड़ा नहीं समझते हो। बाहरी चीजों का जो सेक्रीफाइस है ना, ये कुछ भी नहीं है। तो असली सेक्रीफाइस तो बाद में शुरू होता है, जो आंतरिक चीज है, तो उसका तो कई बार हमारे पास नंबर ही नहीं आ पाता। बाहरी त्याग में फंसे रह जाते हैं लोग, कुछ वस्तुओं का त्याग कर दिया, कुछ कपड़े सादे पहन लिए, कुछ बातें हम अच्छी करनी शुरू कर दी हमने, उनको उसका भी अहंकार हमारे में आना शुरू हो गया। तो इसीलिए ये जो वासना है इसमें ये सारी चीजें शामिल है। डिजायर्स तो एक पार्ट है उसका, क्योंकि जन्म मरण से मुक्ति होनी है आपके, और जन्म मरण का कारण आपका मन है, और मन से छुटकारा जब तक आप नहीं पा लेते हैं तब तक आपकी जन्म मरण से मुक्ति नहीं हो सकती, मोक्ष आपको नहीं मिल सकता। तो मन का खात्मा ही मैंने करना है, स्वभाव का खात्मा ही करना है, सतोगुणी भी नहीं होना है, स्वभाव का खात्मा ही कर देना है। ये सारा विचार यदि आपके मन में चलेगा जब, तब आपको ये होश आएगा नहीं आएगा कि अभी तो मैंने कुछ भी यात्रा नहीं की है, दुनिया को देखते हुए मैंने बहुत यात्रा कर ली, लेकिन गुरु को देखते हुए आपको पता लगेगा कि मैंने तो अभी कुछ भी यात्रा नहीं की है, काय का अहंकार करूं मैं, अभी तो मैं विकारी का विकारी ही हूं। इसीलिए वासना कोई साधारण चीज नहीं है। आपको लगता होगा महाजी ने वासना के ऊपर 3 चैप्टर काहे को लिख दिए, वासना विवेक, वासना छेदन विवेक, वासना अभाव विवेक। अपनी बुद्धि तो मैंने यही कही ना, क्यों इतना सारा लिख दिया महाजी ने, 2 पैराग्राफ में लिख दिया तो सारी बात, क्या क्या बात। इसलिए लिखे, उन्हें पता है तू अहंकारी व्यक्ति है, तेरा अहंकार यही बात करेगा, तो एक जगह पढ़ेगा वहां स्किप कर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, दूसरी जगह पढ़ेगा वहां भी स्किप कर जाएगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। तू एनालिसिस नहीं करेगा वहां, तू रुकेगा नहीं वहां पर। तो वासना के बारे में तूने सारी जिंदगी पढ़ना है, सारी जिंदगी एनालिसिस करना है, तो गुरु तेरी सहायता कर रहा है, थोड़ा 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 करके तुझे वचन लिख के दे रहा है, एनालिसिस का मौका दे रहा है, लेकिन तू पेज के पेज पढ़ जा रहा है, पैराग्राफ का पैराग्राफ पढ़ जा रहा है। तो इसका एनालिसिस इतना गहरा है, इतना गहरा है, जब तू साधना में गहरा उतरा कभी, तब तुझको पता लगेगा ये वासना विवेक चैप्टर जो है ये कितना गहरा है। और उसके बाद 4th पार्ट क्या है उसका, शुद्ध आचरण विवेक। हम तो शुद्ध आचरण पे लेक्चर दे देते हैं, बड़ा सा साधन से कहते हैं सदाचारी जीवन है मेरा, मैं प्रॉफिट ज्यादा नहीं लेता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं किसी को धोखा नहीं देता हूं, 10% दान करता हूं, मैं सदाचारी हूं। पढ़कर तो देखो आप सदाचारी किसको कहते हैं। वहां पर आप ध्यान से पढ़ोगे तो एक ही निर्णय में पहुंचोगे, सदाचारी केवल सत्पुरुष होता है। सदाचारी केवल सत्पुरुष होता है। इसीलिए वासना विवेक का चौथा चैप्टर है शुद्ध आचरण विवेक। तो शुद्ध आचरण केवल सत्पुरुष का होता है। तो बताइए जरा जरा सा सदाचार छोटा मोटा मेरे जीवन में आता है, मैं कहता हूं मैं सदाचारी हूं। कारण क्या है? कारण यही है कि मैं पढ़ना ही नहीं जानता, मैंने तो अभी पढ़ना भी नहीं सीखा है। फिर भी मैं लेक्चर देता हूं, उस लेक्चर का अहंकार भी करता हूं। ठीक है, किसी का प्रारब्ध हो सकता है, किसी के प्रारब्ध में ही है कि उसको लेक्चर देने के मौके मिलेंगे, लेकिन मैंने जो लेक्चर देना है वो तो एक सत्कर्म के रूप में करना है ना उसको। और सत्कर्म कौन सा होता है? वो कर्म जो तुझको ईश्वर प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो, वो कर्म जो तुझको ईश्वर प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो वो सत्कर्म होता है। तो इसलिए तूने अपना भी तो निरीक्षण करना है कि लेक्चर देने के बाद तेरे अंदर क्या भाव आया। ये भाव आया कि मैंने बड़ा अच्छा प्रवचन किया, या ये भाव आया कि प्रभु कैसा आपने प्रारंभ दिया है, ये आप ही की लीला है, मालिक आप ही हो। तो उसको केवल सत्कर्म के रूप में ही उसने करना है, ये भाव उसके अंदर बना रहना चाहिए। जैसे आप किसी को दान करते हो तो दान करने के पीछे क्या भाव बना रहना चाहिए कि देखो मैंने दान कर दिया, इसका दुख दूर कर दिया। तू कौन होता है इसका दुख दूर करने वाला? क्या इस सृष्टि में प्रभु के अलावा दूसरी सत्ता है जो किसी का दुख दूर कर सकती है? किसी को प्रभु ने ताकत दी है कि कोई किसी का दुख दूर कर सकता है क्या? अध्यात्म तो ये नहीं कहता। यदि किसी को दुख देता है तो ईश्वर ही देता है, सुख देता है तो ईश्वर ही देता है, और ये सुख दुख उसके कर्म फल के रूप में प्राप्त होते हैं उसको। तो मैं कहां से सुख दुख देने वाला बन गया? लेकिन जब तक मैं इंसान हूं तब तक तो मेरे भाव बने रहेंगे। तो मेरी सोच कर्म के पीछे आध्यात्मिक होनी चाहिए ना। किसी को दान करते वक्त मेरे अंदर यह भाव आ जाना चाहिए, देखो प्रभु आपने ही तो इसको भेजा है, अब आप इसका दुख दूर करना चाहते हो, इसलिए आप इन हाथों से इसको दान दिलवा रहे हो। ये करनी तो आपकी है, ये शरीर तो मात्र एक इंस्ट्रूमेंट है, एक साधन मात्र है, जो आपने इस साधन को इस्तेमाल किया है। उसी प्रकार जिस प्रकार गुरु का शरीर है, गुरु का शरीर भी साधन ही तो है, ईश्वर के हाथ में गुरु का शरीर भी साधन ही तो है। तो वो प्रभु उस साधन को यूज कर रहे हैं वाणी प्रकट करने के लिए। सत विचार लिखने के लिए समता विलास के रूप में वो प्रभु ही तो यूज कर रहे हैं। तो शरीर तो साधन है प्रभु के हाथों में, तो मैं किस बात का अहंकार कर रहा हूं? इसीलिए ये सत विचार आपके मन के अंदर हर वक्त घूमता रहता है, हर वक्त घूमता रहता है, और ये तभी घूमेगा बारीकी से जब बारीकी से आपकी आदत होगी शास्त्रों का स्वाध्याय करने की। कोई आपको कब तक बताता रहेगा? इसलिए स्वाध्याय करने की आदत होनी चाहिए, तब जाके ये सारा का सारा वासना जाल इच्छा चक्र ये समझ में आता है, आदमी पूरी तरह से अलर्ट होकर इस पांच विकार के दोष को समझता है। और जो व्यक्ति अलर्ट रहता है, याद रखिए, उसका सिमरन में भी मन जरूर लगता है, सिमरन में भी निर्माणता उसके अंदर बनी रहती है। और निर्माणता की पहचान है उसके मन के अंदर प्रभु के प्रति एक प्रेम पैदा होता है, अपनापन पैदा होता है, तो उस प्रेम के साथ उसका सिमरन होता है, तब जाकर धीरे धीरे मन जो है आपका सही रूप में निर्वास होना शुरू होता है, तब आपका कल्याण होता है। ओम ब्रह्म सत्यम।